بسم الله الرحمن الرحیم. معمولات اشرفی حصہ 6 حکایت. ایک صاحب تشریف لائے اور بہت دور سے 50 آم والے چوک سے حضرت والا کے نظر کے لیے لائے. حضرت نے لے لیے مگر فرماتے تھے کہ دل نے قبول نہیں کیا. گھر میں بھیج دیے اور کہلوا دیا کہ ان کو کوئی کھائے نہیں. کھانے کے وقت ان مہمان صاحب کی تلاش ہوئی مگر نہیں ملے. تھوڑی دیر انتظار کر کے دیگر مہمانوں کو کھانا کھلا دیا گیا. وہ صاحب بہت دیر کے بعد تشریف لائے. حضرت نے دریافت فرمایا کہاں رہے؟ عرض کیا قصبے میں میرے ایک شناسا ہیں, ان سے ملنے گیا, انہوں نے نہ چھوڑا حتیٰ کہ کھانا کھلا کر اٹھنے دیا. حضرت فرمایا ان کا اصرار ایسا وقعی تھا کہ پہلی قرارداد کے لیے ناسق ہو گیا. عرض کیا میں مجبور ہو گیا. فرمایا آپ بچے تھے کہ انہوں نے پکڑ کر بٹھا لیا. عرض کیا قصور ہوا, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. فرمایا یہ کیا اچھا لفظ ہے جس سے ان مہمانوں کی تکلیف کا بھی تدارک ہو گیا جو آپ کی وجہ سے بھوکے مرے, اور میرے انتظار کی کلفت بھی مٹ گئی, اور جس نے روٹیاں پکائیں اور چولہے سے سر مارا اس کا تکان بھی جاتا رہا. اور خادم سے فرمایا وہ آم ان کے واپس لا دو. انہوں نے بالہ عرض کیا کہ میں ان کو بڑے شوق سے اور بہت دور سے لایا ہوں, ایسا نہ کیجیے. فرمایا نہیں, بلا اس کے آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ محنت کے بعد چیز کے کارآمد نہ ہونے سے کیا تکلیف ہوتی ہے. آپ نے آم لانے میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, اس سے پوچھنا چاہیے جس نے آپ کے واسطے آٹا گوندا, روٹی پکائی اور چولہا جھونکا. عرض کیا اور جو مزاج چاہے سزا دے دیجیے مگر آم واپس نہ کیجیے, ان کو میں کیا کروں گا. فرمایا میں کوئی حاکم نہیں ہوں جو سزا دوں. ہاں ہدیے کا قبول کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں ہے, میں نہیں قبول کرتا. اور جو کھانے کا آپ کے میزبانوں نے کیا ہوگا وہی آم آپ کا بھی کریں, وہی آموں کا آپ بھی کریں. پھینک دیجیے یا بانٹ دیجیے. غرض وہ آم حضرت نے قبول نہیں کیے اور بیچارے واپس لے گئے. سبق دیتا تھا حضرت پر. حکایت. ایک شخص حضرت والا کے یہاں بہت دفعہ آیا اور دو دو دن اور چار چار دن, حتیٰ کہ ایک دفعہ 15 دن مہمان رہا. خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ سامنے آئے اور نہایت ناخوشی کے لہجے میں اور تو شروع ہو کر ایک دوسرے شخص سے کہا کہ یہ وہ ہے جو بے عزتی کے ساتھ حضرت کے یہاں کھانا کھاتا ہے. دوسرے شخص کو مخاطب کرنا اور اس سے تصریحاً نہ کہنا شاید اس وجہ سے ہے کہ یہ حضرت والا کا مہمان تھا اور حضرت اپنی ذات سے مہمان سے ذرہ نہیں اکتاتے, تو کسی دوسرے کو ٹوکنے کا کیا منصب ہے. یہ مدعی سست اور گواہ چست کا مستحق ہے. حضرات اہل اللہ خود تکلیف کو گوارا کر لیتے ہیں مگر حق تعالیٰ ان کی تکلیف کو گوارا نہیں فرماتے, اور ان کی دل آزاری کی سزا کبھی ان کے عفو سے بھی رفع نہیں فرماتے. حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ لوگوں سے علیحدہ رہتے تھے, اس وجہ سے کہ لطافت مزاج کی وجہ سے بصورت آدمی کو دیکھنے سے تکلیف ہوتی تھی اور اس شخص پر منجانب اللہ عطاب ہوتا اور کوئی سزا مل جاتی تھی. آپ نے دعا بھی فرمائی کہ یہ میرا حق ہے, میں معاف کرتا ہوں, کسی کو میری وجہ سے سزا نہ دی جائے, مگر یہ دعا قبول نہیں کی گئی. اس واسطے آپ علیحدہ رہتے تھے. حدیث میں اس کا ثبوت ہے. جبکہ حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی خواہشات کو پورا فرماتے ہیں تو ان کی ذرا سی تکلیف کو کیسے منظور فرما سکتے ہیں. ان حضرات کی طرف سے مہمانوں سے تنگ دلی نہ صحیح مگر خود مہمان کو مناسب ہے کہ بار نہ ڈالیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب تم سے وہ اچھی طرح پیش آتے ہیں اور تمہارے آرام اور آسائش سے ان کو خوشی ہوتی ہے तो तुमको भी इनकी आसाइश की तदबीर करनी चाहिए, ना कि तकलीफ की। और इंसाफ की बात तो यह है कि एक वक्त का भी बार इन पर ना डाला जाए। जब अदालत में हाकिम के पास जाते हैं तो क्या उसके यहाँ मेहमान होते हैं, या तबीब के पास इलाज के लिए जाते हैं तो क्या खाना और मेहमानदारी भी उसके सर होती है? हाशा व कल्ला, बल्कि कुछ नजराना लेकर अगर वो तवज्जो से बात कर ले तो अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। फिर ये हजरात बलिहाज तबीब रूहानी होने के तबीब जिस्मानी से इस अमर के ज़्यादा मुस्तहक है। अगर इनके करम या अपनी ज़रूरत वगैरह से मेहमान रहने ही का मौका हो तो हदीस में ज़ियाफ़त के मुतालिक यह आया है कि वो 3 दिन तक है और उसके बाद जो है वो सदका है। यानी मेहमान की दावत एक वक्त है और मेहमानी 3 दिन है, और इसके बाद खैरात है। जिसको खैरात और भीख खानी हो वो ऐसा करे। अगर ज़्यादा रहना हो तो अपना इंतज़ाम आप करें, जहाँ और तलबा के खाने का इंतज़ाम हो वहाँ ये भी कर लें। चूँकि हज़रत वाला को मेहमानों पर बहुत ज़्यादा शफ़क़त है, इस वास्ते यहाँ सहूलत मेहमानों के वास्ते थाना भवन के सफ़र के मुतालिक बस करामत बता देना भी मुनासिब है। ये कुछ तफसील बताई थी उन्होंने हजरत के शहर की और उसकी। हजरत वाला जुम्मे के दिन और दिनों से किस कदर सवेरे खाना खाते हैं और कैलूला नहीं फरमाते। गुसल वगैरह से फारिग होकर जामा मस्जिद तशरीफ ले जाते हैं और धूप कड़ी के 1 बजे जुमे की नमाज पढ़ाते हैं। खुतबा अलल उमूम मौलाना इस्माइल साहब का अलहम्दुलिल्लाह अज़ीम सिफात, या फ़की अबू लईस अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल पढ़ते हैं। रमज़ान में आखिरी जुमे को अलविदाई खुतबे को बिदअत फरमाते हैं, जैसे मवाइज में बहुत जगह मौजूद है। अगर कोई माने मौजूद ना हो तो हजरत वाजबी फरमाते हैं, जिसमें वक्ती ज़रूरत का बयान होता है। और अगर थकान हो या कोई और माने मौजूद हो तो कई कई जुमा वाज से खाली जाते हैं। हक यह है कि हजरत का तो हर वक्त वाज ही होता है, लोगों से जो कुछ बातचीत करते हैं वो वाज से भी ज़्यादा मुफीद और जवामियुल कलम की कबील से होती है। शायखीन और जायरीन वाजी को अपना मतमय नज़र ना बनाएं और नवाज पर इसरार करें। बाद जुमा नमाज जुमा के मदरसे में तशरीफ लाते हैं और डाक का काम और दीगर मामूलात में मसरूफ हो जाते हैं, जिसका मजकूर हुआ। रमज़ान में हजरत वाला अक्सर खुद कुरान शरीफ सुनाते हैं और बिला माने कभी कुरान सुनाना नहीं छोड़ते। कुरान तक सवा पारा, फिर 1 पारा रोजाना पढ़ते हैं। शब बस्तुम हफ्तुम यानी 27 को अक्सर ख़त्म करते हैं। जो खूबियां हजरत वाला के पढ़ने में हैं वो सुनने ही से ताल्लुक रखती हैं। तरतील वही रहती है जो आम तौर से नमाज पढ़ाने में होती है। अगर कभी जल्दी भी पढ़ना होता है तो हरफों का तनासुब वही कायम रहता है जो आहिस्ता पढ़ने में होता है। औकाफ और लहजे की रियायत जैसी हजरत वाला के पढ़ने में होती है कहीं कम पाई जा सकती है। याद इतना अच्छा है कि मुश्तबा शाज़ो नादिर ही लगता है। कुरान शरीफ से तबन हजरत वालों को ऐसी मुनासबत है कि गोया अस अव्वल ता आखिर नज़र के सामने है। कोई लफ्ज़ या कोई आयत पूछी जाए कि कहाँ आई है तो बिलवदी जवाब दे सकते हैं। एक मरतबा बमुकाम कानपुर जमात तरावी में मजमा इस कदर और होता था कि जो कोई मगरिब के बाद बहुत फुर्ती के साथ खाना खाकर पहुंच गया तो जगह मिली, वरना महरूम रहा। इस कदर मजमे में सजदे तलावत करने में दिक्कत थी और बहुतों की नमाज जाते रहने का अंदेशा था। इस वास्ते इस रवायत पर अमल किया गया कि आयत सजदा के बाद अगर फौरन रुकू किया जाए तो सजदा सलात में सजदा तलावत भी अदा हो जाता है। मगर तारीफ यह है कि रखतें छोटी बड़ी नहीं होती। यह गायब दर्जे का कमाल है कि शायद ही कोई हाफिज इस पर कादिर हो। रमज़ान में रोज़ा उम्मन मदरसे में मेहमानों के साथ अफ्तार फरमाते हैं और अज़ान अव्वल वक्त बहुत ठीक वक्त पर होती है और इत्मीनान के साथ अफ्तार करके हाथ धोकर कुल्ली करके बतमानियत और सुकून नमाज के लिए खड़े होते हैं। अज़ान और जमात के दरमियान इतना वक्त बखूबी होता है कि कोई चाहे तो इत्मीनान से वजू कर ले और तकबीर उला मिल जाए। अहल खाना अपने घरों पर अफ्तार करके बखूबी तकबीर उला में शरीक होते हैं। नमाज मगरिब से हजम मामूल में औराद फारिग होकर खाना नौश फरमाते हैं और इशा की नमाज के लिए रोज़ाना वक्त के करीब ही खड़े होते हैं। तरावी नहायत इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं। बैनुत तरावियात अस्कार मसनूना अदा फरमाते हैं। रकात के रुकू और सुजूद ऐसे ही होते हैं जैसे तमाम नमाजों के। तहज्जुद के वक्त भी अक्सर सिर्री और कभी क़रात जहरी करते हैं। अगर मस्जिद में बवजह मौतकिफ होने के होते हैं तो बसा औकात हजरत के पीछे तहज्जुद में दो चार आदमी मुक्तदी बन जाते हैं। हजरत इसको मना नहीं करते, हाँ इसका एहतमाम भी नहीं करते कि तहज्जुद जमात के साथ हुआ करे, बल्कि एक मरतबा ये भी देखा कि आज जरा देर में खुली तो मुकर्ररा कुरान दो रकत में पढ़कर फरमाया सहरी खा लो, फिर अगर वक्त बचे तो अपना अपना तहज्जुद पूरा कर लो।